أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ جو آج کی سیریز ہے یہ کیا ہے؟ آئیے ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں. بچپن سے لے کے آج تک ہم سب نماز پڑھتے رہے. لفظ نماز ہو، صلاح ہو، پریئر ہو، ہمارے لیے نیا نہیں ہے. بچپن سے، جب سے میں اور آپ پیدا ہوئے، اپنی نانیوں کے منہ سے، دادیوں کے، باپ سے، ایک مسجد میں جانے والے بچے ہونے کے ناطے سے ہم لفظ نماز 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 سنتے آئے. تو کچھ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی جب ان کو یہ کہا جائے کہ آئے نماز سیکھیں. یہ کیا ہوا، ہمیں تو آتی ہے، آئیے نماز پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں. پھر اب آپ کو اپنے نام دیا کہ آئیے نمازیں بہتر کریں، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہماری گنجائش ہے، ورنہ ہم تو پڑھے پڑھائے ہیں. کسی کو میرے سامنے ایک سسٹر جو تھی وہ دعوت دے رہی تھی، آنٹی جی ہیں کوئی بڑی عمر کی، تو کہتی رہن دے تو مینو کار آ کے ہی پڑھا دیں، مینو آندی ہے. تو ہم سب کا یہی خیال ہے. ابھی انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گی، آپ کو یہاں اپنے ہر اس سوال کا جواب ملے گا کہ نمبر ایک نماز کیوں پڑھے. دیکھیے ہمارا سارا زور جو ہے نا، خاص طور پہ آج مسلمانوں کا، وہ کہ نماز کیسے پڑھے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑی سی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، فرقے بن جاتے، مسلک بنتے، اور چند ریچول رکھے ہوئے ہیں کسی کو پرکھنے کے. اچھا جاؤ پوچھ کے آؤ نماز وہ کیسے پڑھتے ہیں، عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، اور عورت اونچا سجدہ کرے گی کہ نیچا کرے گی، اچھا رکوع میں جانے سے پہلے یا آگے پیچھے رفع الیدین کریں گے کہ نہیں. یہ کیا بات ہوئی، کیا صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے اللہ کے آگے جھک جاتے تھے، تو کیا وہ ان باتوں پہ بات کرتے تھے؟ یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ کیسے پڑھیں. پہلا سوال کہتا ہے کیوں کریں. دیکھیں نا، میں آپ سے کوئی بھی کام کہوں، آپ کی روزمرہ مثالیں زندگی کی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سے کوئی کہتا ہے کہ چائے بنا دیں، تو آپ کیا کہیں گے، کیسے بناؤں؟ آپ پوچھیں گے کیوں بنائیں. میاں صاحب کہتے ہیں 4 کپ چائے بنا دو، تو آپ پوچھیں گے کیوں، تو وہ کہیں گے میرے دوست آئے ہیں. فرسٹ کوشچن کہ چائے بنے گی کیوں، ٹھیک ہے نا. پھر پوچھا جائے گا کیسی بناؤں، سیپریٹ بناؤں، وہ مکس بناؤں، دودھ پتی بناؤں، چینی اندر ڈالوں، اس کو خوب پکاؤں، یا کیٹل والی بناؤں، پھر آپ کی مرضی ہے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیسی بناؤں. بھئی آپ کو مکس چاہیے، آپ کو مکس بنا دیتے ہیں، آپ سیپریٹ پیتی ہیں، آپ کو بغیر چینی کی دیتے ہیں، آپ کو ہنی چاہیے، آپ کو گڑ والی چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے یہ اتنا بڑا سوال ہے نا، جس کے اوپر ہم بہت ہی پریشان ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک شارٹ کورس جو ہم آج سے آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں، آئیے نمازوں کو بہتر کریں. تو اس میں ہم تین چیزیں کریں گے بیسیکلی. آف کورس پہلی چیز کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، اور میں نے یہ بات بیسیوں بار سنائی ہے، جو خود میرے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ درس میں جب میں کسی جگہ تھی انوائٹیز، تو ایک ماں اپنی بچی کو، اچھی خاصی بڑی 10-12 سال کی بچی ہوگی، اس کو لے کے آئی، سیدھی میرے پاس آئی، تو آ کے اسلام کر کے مجھے کہتی ہیں اس کو ذرا سمجھائیں یہ نماز نہیں پڑھتی نا. تو مجھے بہت ہی عجیب لگا، کیونکہ دیکھیں اس ایج کے بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں نا، اور ان کو اس طرح سب کے بیچ میں کرنا، اور ہال بھرا ہوا تھا. تو میں نے نا ان کی بات کو ایسے اگنور کر کے، میں کہا نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی بچی ہے، بیٹا آپ بیٹھیے نا. اس کے بعد اتفاق سے ہی درس سورت فاتحہ کا تھا، تو میں نے اس میں تھوڑی سی بات نماز کی کر دی کہ نماز میں ہم صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، یا کنا بدو یا کنا استعین، اور یہ کیسے کیوں پڑھتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دی کہ آپ کہتے ہیں نماز کیا ہے، تھینک یو نوٹ. آپ مجھے پانی کا گلاس دیتے ہیں، میں کہتی ہوں تھینک یو، تو ایک دوسرے کو ہم سارا دن تھینک یو ایکسکیوز بھی نہیں کرتے. تو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، تو نماز کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں تھینک یو. خیر ایسی ایک دو بات کرتے میں نے، جب درس پورا ہوا تو وہی بچی واپس آئی میرے پاس، کہنے گی کہ آنٹی آج مجھے پتا چلا ہے نماز کیوں پڑھے. میری ماما ہمیشہ یہ کہتی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، پر یہ نہیں بتاتی تھی کہ کیوں پڑھو. اب میں پڑھوں گی، یہ میرا دن میں 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کو تھک کہنا ہے. تب دیکھیے ایک بچی کو پتہ چلا. تو یہاں ہماری اس پوری سیریز کا انشاءاللہ 3 حصے ہوں گے، ہم اس میں ایک اس پوائنٹ پہ بات کیا کریں گے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، اور یہ چیز ہوگی گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو آور صلاح. اللہ کا قرب، قرب الہی، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے صلاۃ قربانیت لکل مومن، نماز ہر بندے کے لیے اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. اور اس پہ ہمیشہ ڈیلی باتیں ہوتی رہیں گی ہماری، بہت کچھ ہم پڑھتے سنتے رہیں گے. یہ اصل میں سارے دن میں آپ کا ٹائم ہے، اٹس مائی ٹائم، مجھے اپنے رب کو فیس کرنا ہے، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی. یہ جو نماز ہے یا کا نعبدو یا کا نستعین، اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے، ایک ڈائلاگ ہے بٹوین اللہ اور بندہ. کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب پیش ہونا ہے تو یہ اس کی تیاری ہے. تو اصل میں یہاں آپ اپنے لیے آ رہی ہیں किसी के लिए नहीं। तो आपको हम यहाँ पहले तो इल्म की दुआएं सिखाते देंगे, रोज बस पढ़ेंगे आप लोग। इसमें आपका कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, असाइनमेंट अभी फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। आपका असाइनमेंट दिन में 5 वक्त की नमाज में आप हल करेंगे। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि जिसने ये सीरीज, ये कोर्स ज्वाइन किया, आप एंड पे अपनी जिंदगी में एक बदलाव पाएंगे। आज हमारे सारे मसले हैं कि हमारी नमाजें मुर्दा हैं, बात करके आते हैं अल्लाह से और पता ही कोई नहीं। नमाज जल्दी से पढ़ के बिस्मिल्लाह सलाम अलैकुम सलाम के और फिर हाथ उठा लेते हैं दुआ के लिए। भाई नमाज में कॉल मिली हुई थी, आपका कनेक्शन था अल्लाह से जुड़ा हुआ, तो वो तो आपने जल्दी खत्म किया और बाद में दुआ के लिए हाथ खड़े किए। नमाज तो पूरी दुआ है। अब आम तौर पे आप देखिए कि फोन कॉल मिली हो तो हम बात करते हैं ना, अब तो हम लंबी बातें करते हैं ना, क्योंकि मुफ्त के खाते हैं। एक वो वक्त था जब लॉन्ग डिस्टेंस कॉल 3 मिनट या 6 मिनट की होती थी, सारे घर में थरथली पड़ जाती थी, बाहर से कॉल आई हो जल्दी करो, बाहर आओ देर हो रही, बीच में ऑपरेटर भी बोल रहा होता था 3 मिनट रह गए, 2 रह गए। अब फोन पे बात करते हुए जल्दी जल्दी और बंद में रिसीवर नीचे रख के तो बातें करनी शुरू कर दे, पहले बंद कर दिए कि पैसे ना पड़ जाए। बात समझ आती है ना। अल्लाह ताला के लिए हमारा ऐसा कोई हिजाब नहीं, यानी अल्लाह ताला सिर्फ नमाज में ही हमसे नहीं बात करता, नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह सुभान ताला हमारे साथ क्या करते हैं, नमाज के बगैर भी। वैजा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब उजीबु दावत अद्दा इजादान, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो कहें कि मैं तो करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। कभी आप दुख में होते हैं, कभी आप सुख में होते हैं, अब मैं युजीबुल मुज़्ज़र्रा इजादा, कौन है जो दुख में तुम्हारी सुने। लेकिन नमाज असल में प्रैक्टिस है कि यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, नमाज का क्याम अल्लाह के आगे खड़ा होना सिखाता है, नमाज का रुकू वरकौ मराकीन अल्लाह के आगे झुकना सिखाता है, नमाज का सजदा वसजुद वक्तरिब सिखाता है। तो इस तरह से आप लोग सीखेंगे। फिर दूसरी चीज इसमें आपके लिए जो होगी वो क्या है, नमाज का पूरा तरीका, ताकि नमाज तो ठीक हो ना, हमारी लैंग्वेज सही ना हो, बात का ठीक ना तरीका हो, का को काफ पढ़ दें तो ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो बुक अभी आपने दी, ये नमाज के मसाइल है, इसमें पूरी नमाज है, तर्जुमा, नमाज की दुआएं, नमाज के मसाइल, जनाजे की नमाज कैसे पढ़नी है, इस्तखारा कैसे करना है, सफर की नमाज, कसर और ये वो। अब आपका एक जहन में सवाल आएगा फौरन जी के ये किसकी लिखी हुई है, किस मसलक की है, तो आपका फर्ज है पूछना। मैं पहले दिन ये सबको बताती होती हूँ कि देखिए कि ये बुक, जो मैं सीरीज की नहीं बात कर रही, ये जो बुक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये क्या है, किस फिक की है। पहली बात है ये फिक है, तफहीमुस सुन्ना, सुन्नत के अंडरस्टैंडिंग। अब ये सीरीज क्या है कि इसमें हम इसका वहां से पार्ट शुरू करते होते हैं जहां से मसाइल हैं, जैसे कल इंशाल्लाह आप नियत के मसाइल पढ़ते हैं ना, अहदीस है ऊपर एक जुमला, ये जुमला हेडिंग है सिर्फ, बाकी हदीस उसका तर्जुमा, हदीस उसका तर्जुमा, यानी आप बड़े यकीन से कह सकते हैं कि ये हदीस की किताब है। नमाज के मौजू पर सही अहदीस टॉपिक वाइज जमा की हुई है, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, मेरी किसी उस्ताद की लिखी हुई नहीं है, ये किसी भी आलिम की लिखी हुई किताब नहीं है। ये सीरीज जो है ये आपको तफहीमुस सुन्ना दिखती है, लेकिन जो इसके राइटर मोहम्मद इकबाल केलानी साहब है। ये कौन है, बस इन्होंने क्या किया कि किताब में इनका अपना कोई काम नहीं सिवाय हेडिंग्स के, टॉपिक जैसे हदीस का मौजू जिसको बोलते हैं उनवान, बस उसके बाद ये पूरे यकीन से आप देखेंगे कि ये किताब क्या है, हदीस है उसका तर्जुमा। आप इंशाल्लाह इधर हदीसें दोहराएंगे, उससे आप खूबसूरत भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी की दुआ है कि जो मेरी हदीस पढ़े सुने, यानी मोहब्बत के साथ उसको पढ़ता याद करता ऐसा करता है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को चमकदार करता है। आज मैंने आपको एक नमाज पढ़नी सिखानी है। कौन सी नमाज? मोहब्बत की नमाज। कभी पढ़ी है? आप कहेंगे हमने तो कभी सुना ही नहीं है, कोई नई नमाज निकल आई है और कोई फतवा ना लगा दे हम पे। लेकिन असल बात पता क्या है, आज नमाजें हैं मोहब्बत नहीं है, आज हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि नमाज क्यों पढ़नी है। हम नमाज को एक एक्टिविटी समझकर, फर्ज समझकर बर्रा टालते हैं, ना पढ़ी तो आग में चले जाएंगे, हाय नमाज फर्ज है, क्या मुसीबत है, जवान हो गए हैं अब नमाज पढ़नी पड़ेगी। हम नमाज पढ़ते हैं आग से बचने के लिए, हम नमाज पढ़ते हैं अपने इस्लाम को बचाने के लिए। तो याद रखिए मोहब्बत की नमाज क्या नमाज है। आप देखिए कि नमाज में चंद चीजें हैं ना, क़याम फर्ज है, रुकू फर्ज है, सजदा फर्ज है, इनके बाद नमाज नहीं होती ना, जो हमारी आम रेगुलर नमाज है। तो क़याम फर्ज, रुकू फर्ज, सजदा फर्ज। अब मुझे एक बात बताइए, जरा सा सोचिए, सजदा अफजल गिना चाहता है ना, वस्जुद वक्तरिब अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने एक रुकू की बजाय अगर 3 सजदे फर्ज कर दिए होते तो हम 3 पढ़ते। अल्लाह ने एक रुकू दिया है, हम 2 क्यों नहीं करते? सवाल सोचिए, किसी ने ये सवाल किया कि सजदा तो अहम है तो वो बाद में क्यों है, रुकू पहले क्यों है? तो उसको किसी अरब शायर है तो उसने एक बड़ा जुमला कहा है, वो कहता है कि मोमिन पहले झुक कर महबूब का नक्शे कदम तलाश करता है, फिर इसे चूमने के लिए उस पर गिर पड़ता है कि जिसको वो कहते हैं ना कि ये शुक्राना होता है। पहला सजदा तो अल्लाह से मोहब्बत का और दूसरा शुक्र का सजदा होता है कि तेरे नक्शे पाक की तलाश में झुका था नमाज में। यानी ये नमाज, इश्क की नमाज, जिसको आज अगर आपने कभी कहीं रूहानियत के नाम पे कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा ना, लेकिन ये मोहब्बत की नमाज है। ये मारे बांधे सजदे, ये दुख के सजदे, ये तकलीफ के सजदे, ये मुश्किल सजदे, अल्लाह आपको मुझे ये नहीं करवाना चाहता। असल जो अल्लाह से बंदे का कम्युनिकेशन था ना, वो नमाज में था। शैतान ने हमारी नमाजों पे डाके डाल दिए, माजरत के साथ उसने हमारी नमाजों को इतना खराब कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। इमाम इब्ने कय्यिम रहमहुल्ला असलाफ में एक बहुत ही प्यारे इमाम गुजरे हैं, वो कहते हैं कि नमाज रिस्क को लाने वाली है। अब ये एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा कि नमाज ही को रिस्क ढूंढता है। क्या आज लोग रिस्क के लिए परेशान है? मारा मारा नहीं फिर रहा बंदा? 12-13 साल की लड़की और लड़का, बच्चा और बच्ची कमाने की धुन सवार हो जाती है। कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले, कोई समर जॉब कर ले, और इमाम साहब कहते हैं कि नमाज रिस्क को लाती है, सेहत को महफूज करती है। आज बीमार हैं ये, डॉक्टरों के आगे लाइनें क्यों लगी हुई हैं? सेहत के लिए जाते हैं ना। फिर कहते हैं नुकसानात से बचाती है, आज नुकसानों से बचते हैं। सैलाब वालों के घर रुड़ गए, उनकी ये जो बेचारों की कच्ची झुग्गियां थी या पक्के भी घर थे तो एक हो गए। तकलीफें आती है ना, नमाज नुकसानात से बचाती, बीमारी को दूर करती है, दिल को तकवीयत देती है और चेहरे को गोरा करती है, रूह को तरोताजा करती है, और सबसे बड़ी बात जो मैं कह दूं, सुस्ती को दूर करती है। अब आप देखिए, रिस्क, सेहत, नुकसानात से बचाओ, बीमारियों से दूरी, दिल की तकवीयत, चेहरे को गोरा करना, रूह को तरोताजा करना और सुस्ती को दूर करना, 8 फजाइल सिर्फ एक कॉल में आपको मुझे नमाज के पढ़ते हैं। लेकिन क्या हम नमाज के बारे में इतने संजीदा? आज आप बच्चे का रिश्ता कर रहे हैं, सब कुछ पूछेंगे। पहले तो जात पूछते हैं, बिरादरी पूछते हैं, रंग पूछते हैं, उसकी जेब कितनी भारी है, उसमें क्या लिखा है, कितना है, लेकिन नमाज की बात करें कहते हैं ये तो पूछा ही नहीं था। अच्छा ये तो नहीं पूछना, माइंड कर जाएंगे, गुस्सा कर जाएंगे, फिर बाद में बुराई होगी, खुद ही पढ़ लेगा। और हमारी बेटी जो है ना, वो पढ़ा लेगी उसको नमाजें? वो इतनी कमजोर महीन सी बच्ची आप भेज रहे हैं उसके घर में, और जिसने सारी जिंदगी नहीं पढ़ी वो कोई नहीं पढ़ते, इल्ला ये कि अल्लाह उनके दिलों को बदल दे। तो क्या पता चला कि नमाज इससे ज्यादा अहम है जितना हम इसको समझते हैं। कुरान पाक में जहन्नम की 3 वादियों का तस्करा है। वादी जिसको वैली कहते हैं ना उर्दू में, वादी है सिंध, वादी है कागान, चारों तरफ पहाड़ होते हैं और अंदर बीच में प्लेन जगह होती है। जहन्नम की 3 वादियों का तस्करा कुरान में आता है और तीनों के साथ नमाज का लफ्ज है। यानी आपको मैं सिर्फ ये बातें डराने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए बात बता रही हूं कि नमाज का मुकाम दीन में क्या था और आज हमने उसको क्या बना दिया। हमें अपनी नमाजों की फिक्र नहीं, बच्चों की है। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सच बता रही हूं अभी से, बच्चे आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो आपको देखेंगे। जो आप करेंगे वो देखकर वो भी करेंगे। आप देखिए, पहले दौर में जब घरों में औरतें मिलजुल के रहते थे तो नमाज पढ़ती तो छोटी छोटी बच्चियां माओं के दुपट्टे उठा के ले आती थी, घर के दुपट्टे और ये टेबल क्लॉथ जो थे उनको सरों पर ले लेके नमाज पढ़ती थी। आज भी इस चीज को देखा गया कि जिस घरों में माँ बाप और बुजुर्ग वक्त पे नमाज पढ़ते हैं उनको अपने बच्चों को कहना ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं कहना पड़ता? इसलिए कि बच्चे सुनते नहीं है, देखते हैं। आज लोग कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं, नहीं ना सुने, वो आपको देख रहे हैं। तो क्या पता चला कि हमें अपनी नमाजों को सही करना है ताकि हमारे बच्चे नमाजी बने। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आप अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाएं। तो हमने इधर मोहब्बत की नमाजें सीखनी है। जब दिल से अल्लाह की मोहब्बत के कुर्ब को आप महसूस करेंगे ना, तो आप फिर वो मोहब्बत वाली नमाजें पढ़ेंगे। जितनी अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, नमाज का हुसन और नमाज की बातें महसूस होंगी। मैं एक आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आप मेरे साथ साथ रहें। सिर्फ इस सोच के तहत, याद रखिए, ये कोई आपको मैं खास इस्तलाह के साथ कोई काम करना नहीं सिखा रही, लेकिन सिर्फ आपको नमाज की जो रूह है ना वो सिखाना चाहती हूँ। और इसका टॉपिक ही क्या है, मोहब्बत की नमाज। राइटर हैं कारी हनीफ साहब, है वो लिखते हैं کے احباب نماز کا طریقہ نوٹ فرما لیں اور صرف دو رکعت پڑھ کر ہی اسے آزما لیں. میں آپ کو کیوں سنا رہی ہوں یہ بات؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آج تک کبھی کوئی بھی جو ہم دن میں پانچ نمازیں پڑھتے اس میں ہماری یہ کیفیات ہوئیں جو اس میں ایک آپ کو طریقہ سکھایا گیا. صرف دو رکعت کی پڑھ کر آزما لیں. فرض نمازوں میں ہم عموماً امام کے پیچھے ہوتے ہیں, جس میں ہماری کیفیت جہاز میں یا گاڑی میں سوار ہوئے مسافروں کی سی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, ڈرائیور جدھر لے جائے آپ چلتے ہیں. تو جب مسجد میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو جو مرد ماشاءاللہ مسجد کے نمازی ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو امام صاحب کہہ رہے ہیں, تو ڈرائیور کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ نفل نماز کے لیے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ نفل دو ذرائع سے خود پڑھیں. فرض تو آپ پڑھ نہیں سکتے نا, کیونکہ مسجد میں پڑھیں گے اور امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں, ہم خواتین جیسے مرضی پڑھ لیں. خصوصاً فجر کی اذان سے ایک گھنٹہ یا 40 منٹ پہلے اٹھ کر اچھی طرح تسلی کے ساتھ وضو کر لیں. نماز نفل ہے, دل میں اس کی نیت کر لیجئے اور ثنا اور فاتحہ کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا طلب کر رہے ہیں. سوچے ذرا کس کے در میں ہوتے ہیں آپ. اس ملک کے کنگ کے سامنے جائیں, کیا مانگیں گے؟ 20 یورو مانگیں گے, 20 کرون مانگیں گے, 100 کرون مانگیں گے, اور وہ اگر آپ کو کہہ بھی دے کہ جو مانگیں گے آپ کو دوں گا. ناروے میں موجود لوگ اپنے کنگ کے پاس جائیں تو کیا اسے کوئی 100-200 والی چیز مانگیں گے؟ وہ کہے گا میری بےزتی کی ہے تم نے, یہ تو تم میرے پین سے لے لیتے. آپ جا کے کنگ سے کہیں اچھا بس وہ ذرا 100 کرون دے دیتے ہیں آپ, تو اس کو انسلٹ فیل ہوگی. وہ کہے گا میرے پاس آئے کو بڑی چیز مانگو, کوئی گھر مانگو, کوئی رول مانگو, کوئی مسلمانوں کے لیے جگہ مانگو, کوئی بڑوں کے لیے مانگو, کوئی بڑی چیز مانگو. وہ کیا ہے؟ ملکہ الزبت گئی, 96 ایئرز اولڈ, دنیا کی دوسری شاید لانگیسٹ ٹائم پہ کوئن رہنے والی عورت چلی گئی نا. آپ ان کی آخری رسومات جو آج کل میں ہو رہی ہیں اور آپ کے بھی تک چیزیں جاتی ہوں گی ان کو ذہن میں لائیے. اس کوئن کو بادشاہت دینے والے مالک اور بادشاہ کا کیا مقام ہوگا؟ لوگ ہزاروں بلین ڈالرز میں جائیدادوں کے تخمینے لگاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اس کی کیا شان ہوگی؟ اصل میں وما قدر اللہ حق قدری, مجھے کچھ کہنے دیجئے. 3 دفعہ تو مجھے یاد ہے قرآن کی آیت, اور بھی کہیں ہو سکتی ہے. وا اور ما نہیں, قدر اللہ قدر کی لوگوں نے, اللہ کی حق کا قدری جو اس کی قدر کا حق تھا. تو میں اس کو اپنی سینس میں کہتی ہوں وما قدر الصلاۃ حق کا قدر ہو, لوگوں نے نماز کا وہ حق ادا نہیں کیا جو نماز کا حق تھا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم محبت کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں رکوع میں کھڑے ہوں جو بھی صورت پڑھیں تو اس کے ترجمے پہ غور کریں, پھر رکوع میں جا کر فوری تسبیح مت پڑھیں. اچھا ہمیں تو پڑھی ہوتی ہے جلدی, اور بھول نہ جائے گنتی گن رہے, اور خاص طور پہ تسبیح نماز جب کبھی آپ پڑھتے ہوں گے زیادہ فوکس اس وقت تعداد پہ نہیں ہوتا, اور بیچارہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہ انگلیوں پہ گنتا رہ جائے گا کہ میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ 15 پڑھا. آپ رکوع میں جائیں, میں آپ کو بالکل امیجینیشن میں لا رہی ہوں. دیکھیے جو لفظ ہے نا یہ نبی نے سکھائے, لیکن نماز کا یہ رکوع قیام یہ طریقہ یہ فرض ہے. ایون اگر آپ بہت کچھ تسبیح نہیں بھی پڑھتے, نیا مسلم ہے کوئی ریورٹ ہے وہ صرف کھڑا ہو کے ایکشن کر لیتا ہے نا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہ جو بیچ میں تسبیح آتا ہے نا یہ سلو کمار آئی تو مونی اور سلی ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے رکوع بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں اور اس میں گنتی پڑھ رہے ہیں کتنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے تو رکوع میں گر گئے سجدے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اسفل. اب ذرا سا میری بات پہ توجہ دیجئے, آپ نے جو نماز پڑھنی ہے نا آپ رکوع میں جائیں کچھ نہ پڑھیں. امیجنیشن میں لائیں ذرا, آپ کو مزہ آئے گا بی بی سوچ کے. کچھ نہ پڑھیں, اپنی پوزیشن کو ذہن میں لا کے کریں یہ میں کیا کر رہی ہوں. رکوع فرض ہے, تسبیح فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. جب آپ بغیر پڑھے تقریباً 1 منٹ رکوع میں رہیں گے تو آپ وہ آٹو موڈ سے نکل آئیں گے اور مینوئل موڈ پر آ جائیں گے. اب آپ جو کہیں گے نا وہ شعوری طور پہ کہیں گے. تسبیح میں کہ سبحانہ ربی, آپ کہیے, آپ کہتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, نہیں آپ کے سبحانہ ربی العظیم سبحان ربی العظیم. جب آپ کہیں نا سبحان تو بالکل اللہ تعالیٰ کو ایگزیمٹ کریں ہر چیز سے, ربی ربی کہیں نا تو اس قرب کو محسوس کریں محبت کو, اور جب کہنا العظیم تو پوری کائنات کو تصور میں لے آئیں. اتنی بڑی ہستی, اس میں کائنات, اس کی تخلیق کرنے والا, میں آج اس کے آگے جھکی ہوں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. آپ اللہ کی عظمت سے اپنے دل کو بھر لیں اور تعداد 3 سے بڑھا دیں, 5 7 बीच में रुक भी जाएं कभी। आप कैसे पढ़ेंगे? आप बिल्कुल अल्लाह के आगे अपने आप को झुका महसूस करें। और मैं जब रुकू में जाती हूँ ना, तो मैं घोड़े को, जो कैटल्स हैं उनको सोचती हूँ। देखना उनका सर हिला हुआ है, घोड़े का मुंह नीचे होता है, गाय का नीचे होता है, बैल का, भैंस का, बकरी तो और ही बेचारी झुकी होती है। अल्लाह ने आपको मुझे दिखाया, एक नमाज में हर मखलूक वाली कैफियत है। रेप्टाइल क्रॉल करते हैं तो हम सजदे में चले जाते हैं, कुछ बिल्कुल खड़े हैं, पहाड़ खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं वो रुकू में। तो आप जब रुकू में जाए ना, तो आप ऐसे पढ़ें जैसे सोच के मदद, सुबहाना रब्बी अल अजीम, सुबहाना रब्बी अल अजीम, सुबहाना रब्बी अल अजीम। रुके बीच में, कोई बात नहीं है। आपने क्यों 20 नफिल पढ़ने हैं? आपको 2 भी बहुत है। और ये सारी प्रैक्टिस आप तहज्जुदों में करें, सुबह की इशराक की नमाज में करें। ऐसे ही फारिग बैठे, घर के काम खत्म हो गए, बच्चे भी गए, मियाँ भी गए, साफ सुथरा हो गया, वजू किया, शावर लिया, कपड़े बदले, चलो मैं 2 नफिल पढ़ती हूँ, बस उसमें आप ये खेलें, पूरा अल्लाह की अजमत से दिल को पढ़े। फिर शुरू में 3 पढ़ते थे, फिर 5 पढ़े, 7 पढ़े, फिर सर उठाए। वो तरीका आप जानते हैं, समय अल्लाह लिमन हमीदा, कहते हैं समय अल्लाह लिमन हमीदा। जब बंदा कहता है ना, तो फिर फरिश्ते को बीच से निकाल के अल्लाह खुद उसकी नमाज सुनता है। फिर जब सजदे में जाए ना, तो कहते हैं अल्लाह नाक की लकीरें निकालने लगी हूँ, सर सजदे में रख दिया, और फिर 1-2-3 मिनट कुछ ना पड़े, महसूस तो करे मैं कर क्या रही हूँ, मैं किसके आगे हूँ। फिर वो अपने आप को ऑटो मोड में से मैनुअल मोड पे लाइए, अल्लाह के सामने अपनी हजूरी को मुमकिन करें, कल्ब से शऊर की मौजूदगी के साथ अपने आप को ऐसे महसूस करें कि मैं एक जमीन पे सर रखा हुआ है, किसी बंदे के सामने बंदा नहीं रखता। और जब आप सर जमीन पे रखते हैं ना, तो सोचें किसके सामने रखा है, और फिर वहां अपनी मजबूरियां, अपनी बीमारियां, अपनी कमजोरियां खोल खोल के बयान करें, शिकायतें लगाएं, रवैये लोगों के, अल्लाह जी देखो वो मेरे साथ ये कर गया, अल्लाह जी उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, अल्लाह जी देखे मुझे कैसे घूर गया, अल्लाह मुझे कैसे डांट गया, अल्लाह जी मैं क्या करूं, सुभान रब्बी अल अल्लाह, तू कितना बड़ा है, मैं कितनी छोटी हूं। कैफियत पैदा करें, सजदा जारी रहे, जुबान खामोश हो, और उसमें सोचे कि मैं तो झुकी हुई, मैं तो कक्खों से भी होली, उसकी अजमत, उसकी बुलंदियों को सोचिए और अपना छोटा उतना सोचिए, आसमान के सितारों को सोचे, रेत के जर्रों को सोचे, दरख्तों के पत्तों समेत जो कुछ उसकी तस्बीह कर है, सब कुछ सोच कर कहें, ए अल्लाह बड़े बड़े नेक लोग हरम में इस वक्त सजदा कर रहे हैं, कितने ही ऐसे होंगे इस वक्त जो रियाजुल जन्ना में सजदा कर रहे हैं, ए अल्लाह मैं तो अपने घर में हूँ, अल्लाह मैं तो अपने कोने में हूँ, अल्लाह तू उनका भी देखता है ना, तो तू मेरा भी देखता है, अल्लाह तू मेरी तरफ आ, अल्लाह मैं हरम में नहीं जा सकती, अल्लाह मैं मस्जिद नबी तक नहीं पहुंच पा रही, अल्लाह मैं तेरे साथ अपने घर में बैठ के तो बात कर सकती हूँ। आपका जो रब से ताल्लुक जुड़ेगा, और जब ये कनेक्शन मिल जाए, तो फिर कह सुबहाना रब्बी अलाला, सुबहाना रब्बी के फिर अलाला वक्फा दें, प्यार करें, लाड करें, जब दिल भर जाए प्यार से, ओवरफ्लो होने लगे अल्लाह की मोहब्बत, तो दोबारा कह सुबहाना रब्बी अलाला, आप 2 नफिल पढ़ के तो देखें दिल की दुनिया बदली होगी। ये 2 रकतें ही नहीं पढ़ी हमने, आपने दिल की कैफियत का अंदाजा लगाएं, और आप देखेंगे कि आप जितना ज्यादा बिछेंगे ना, लाड करेंगे अल्लाह से, अपनी बातों के मोहब्बत के पेश करेंगे ना, उतना अल्लाह ताला आपका दिल खोलेगा, आप महसूस करें, आप कहें कि अल्लाह मैं बेचारी, अल्लाह मैं मजबूर। बंदे मोमिन अल्लाह के आगे बिछा होता है, रोए ही रोया, रोए ही रोया, और दूसरों के आगे बिल्कुल सीधा होता है, नहीं सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर दिल बैठ रहा होता है, गम है, तकलीफ है, हाय क्या होगा, लेकिन बंदों के अंदर कहता है कुछ भी नहीं, अल्लाह के आगे बिछता है तो बस उसके आंसू ही निकल आते हैं। यहां ऐसी नमाजें आप सीखेंगे, और ये नमाज अगर आपके बच्चों के साथ मिलकर आप सीखेंगे, तो फिर देखें आपके घर के हुजरे में मौजूद कोने में छुप के पड़ी नमाज आपको मस्जिद नबी की नमाज से ज्यादा अफजल लगेगी, जहाँ चारों तरफ कुमकुमे भी हैं, वहां तो आपको इतने देखने वाले हैं, फिर आंसू भी निकलेंगे, फिर दिल की बात भी आएगी, अकेले में दोस्त के साथ बातें करें तो दिल की बात आ जाती है ना जुबान पे। नमाज अल्लाह से राजो न्याज है, दुख सुख है, और जब आप अल्लाह ताला के सामने बात करें तो घिघी बन जाए, ऐ मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे खालिक, मेरे रब, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा है, अल्लाह मैं बड़े गुनाह करके आई हूँ, अल्लाह तू ऐसे आई है, और वो जैसे होंठ है ना, वो तितली के परों की तरह कप कपा रहे हो, अपने गुनाहों के फोल्डर्स को आप तसव्वुर में देखती जाएं, और साथ ही अल्लाह के करम के फोल्डर खुलते जाएं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आप कहीं भी जाते हैं ना, तो आपका फोन कनेक्शन ढूंढ रहा होता है, आप खोलेंगे ना, अगर वीफी कहते हैं आप लोग इधर, बाहर वाले सुन रहे हैं तो वो वाईफाई कह देंगे, वाईफाई के सिग्नल ढूंढते हैं। तो जब उसको आप कोड डाल देते हैं तो वो सुकून से ठंडा होकर बैठता है। इसको इस्लाम की जुबान में इनाबत कहते हैं। वानी बोला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ झुक जाओ, इनाबत कर लो। अब क्या हुआ, आपका दिल भी रब से जुड़ना चाहता है। नमाज में आपका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ना चाह रहा होता है, और जब आप ऐसी नमाज पढ़ लेंगे तो वो कनेक्शन जुड़ जाएगा। ये एक कस्टमर कॉपी है, असल इसका लुत्फ आप लेंगे जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे। मन हब्ब लिका अल्लाह या हब्ब अल्लाह लिकाहु, फिर आपको उस दिन समझ आएगा ये है वस्जुद वक्तरिब, ये है सलात कुर्बानियत लिकुल्ली मोमिन। आपका फिर दिल लग जाएगा। आप अपनी फ्रेंड के साथ हो तो आपको कैसा लगता है, जो दुख सुख जुबान पे आ जाते हैं। शोहर बीवी में मोहब्बत भी और अंडरस्टैंडिंग भी हो तो बंदा उनसे दुख सुख करता है, दिल की बातें करता है। फिर आपके दिल का वो हाल होगा कि फजर पढ़ के इंतजार करेंगे सूरज कब तुलू। अब दिल की भड़ास निकाल ली, अब फजर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप दिन में फिर आप चाश के नफिल दो पढ़ लेंगे, फिर चार पढ़ लेंगे बाद में, और आपको जोहर का इंतजार लग जाएगा, फिर जोहर के बाद असर का, यानी फिर इंतजार उस सलात ही बाद सलात। आप अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी यही चाहेंगे। नमाजों को जिंदा कीजिए। आपको अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा अपने बच्चों को नमाज पढ़ो, बुरा काम नहीं करते। आज लोग नमाजी भी हैं तो बुरे काम भी करते हैं। इंशाल्लाह एक दिन आपको नमाज और बुराइयों का ताल्लुक बताऊंगी। तो ये सिर्फ एक छोटा सा आज आपको तमहीद थी कि आप रिलैक्स फील कर रहे हैं अपने आप को, आपको लग रहा है कि इसकी आपको जरूरत है, और क्या इस पूरे शहर को इसकी जरूरत नहीं। हमारी नमाजें ऐसी नहीं है, हमें मोहब्बत के सजदे नहीं करने आते हैं, हमें आजजी वाले रुकू नहीं करने आते, हमारी अना नहीं झुकती। वो कहते हैं ना कि अनाए कबीर के सामने अनाए सगीर को झुकाओ, अल्लाह अकबर है, तुम अपने आप को अनाए असगर तो कहो। देखिए नमाज तो असल में बंदे को उसकी औकात दिखाती है। आप मैं अल्लाह के साथ जब अपने ताल्लुक को महसूस करेंगे, मुझे किसी और की क्या जरूरत है। सारी दुनिया कहेगी नहीं होना नहीं होना, मैं कहूंगी चुप करो, मेरे हैं रब्ते, मैं उससे पूछूंगी अल्लाह जी सारे कह रहे हैं ये काम नहीं होना, तो आप कर देंगे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अल्लाह जी डॉक्टर कौन होते हैं, आप तो इतने बड़े, आप तो शाफी हैं, अल्लाह जी आप मेरी सेहत दे दे, अल्लाह मेरा बच्चा बिगड़ गया, अल्लाह ये बेहदायत है मैं किधर लेके जाऊं, अल्लाह मेरा सर आपके आगे, मेरे बच्चे का दिल बदले, मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, अल्लाह जी आप करा देना। हम बातें नहीं करते, लाड नहीं करते, और नमाज क्या पढ़ते हैं जो हमें बचपन में सिखाई गई थी। आपको मुझे तो अरबी नहीं आती ना, साहबा को एक बेनिफिट था कि उनको अरबी भी आती थी। आपको पूरी नमाज उर्दू में सिखाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को भी नमाज का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा भी सिखाया जाएगा। शर्त यह है कि आपने इसको अपने लिए रखना है। देखिए ना कि बच्चों को 10 साल की उम्र में जो बेहतरीन तोहफा आप दे सकते हैं वो नमाज का, सारी उम्र बाद में वो आदत नहीं पड़ेगी जो अब पड़ेगी। चले अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबु रहीम व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।